जय माँ, जहाँ ज्ञान की देवी उपस्थित होती हैं वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है वैसे भी। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा, पहले उसकी थोड़ी चर्चा हो जाए कि बहुत सारी बैकग्राउंड ध्वनियाँ आ रही थी संगीत के बीच में, पता नहीं बाकी जगह आ रही थी कि नहीं, या पर यहाँ आ रही थी। और उससे एक बड़ी जो अद्भुत बात कि हम लोग कई बार कहते हैं कि हमको भगवान की वाणी नहीं सुनाई देती, तो भगवान की वाणी सुनने के लिए जो बैकग्राउंड नॉइजेज हैं इसको हमको शांत करना होता है। और बैकग्राउंड नॉइजेज सारी हमारी डिज़ायर से आती, कामनाओं से। इसीलिए जब हम देखेंगे महेश्वरी का वर्णन तो उसमें एक एक शब्द आता है इक्वानिमिटी, इक्वालिटी। तो ये सारी जो चाहतें, जो डिमांड्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमको ज्ञान से दूर करती हैं, क्योंकि जो सत्य है वो हमें दिखता नहीं, वो एक कलरिंग हो जाती है हमारी आंखों के सामने। तो ये अभी अभी सीखा, इसलिए कहते हैं ना नया नया ज्ञान आप शेयर करना चाहते हो। एक और भी चीज़ हमने यहाँ पर सीखी, तो वो हम लोग दरवाज़ा खोल रहे थे तो बहुत ज़ोर से वो आवाज़ कर रहा था, उसकी अपनी मतलब दो ध्वनियाँ आ रही थी मन की ध्वनियों के अलावा, एक हो रही थी जो माइक से और एक हो रही थी द्वार खोलने से। तो उससे भी ये सीखा कि कई बार जब बहुत समय तक हम लोग अपनी प्रज्ञा को नहीं खोलते हैं, क्योंकि हम भटकते रहते हैं इंद्रियों के जाल में जिसको हम ज्ञान समझते हैं, तो क्या होता है कि जब उस द्वार को खोलने की चेष्टा होती है तो बहुत चीख पुकार होती है, क्योंकि वो जो ज्ञान, जो ज्ञान क्या प्रज्ञा जो महेश्वरी ला रही हैं वो मानव चेतना, मानव समझ के बहुत ऊपर है। और उसका कारण बहुत सरल है, जैसा कि शेरविंद हम लोगों को बताते हैं इसी महेश्वरी पुस्तक यानी दी मदर में, महेश्वरी एस्पेक्ट में, कि हमारा जो ज्ञान है जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो एक तो तर्क पर आधारित है, इंद्रियों के डेटा पर आधारित है, फिर तर्क के द्वारा हम उसको एनालाइज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत सीमित कालखंड में देखते हैं, 5 साल वो भी नहीं, 6 महीने, 1 साल। अभी कितनी सुंदर बात एक जो आपने बताई और बिल्कुल हम इससे सहमत हैं, कोरोना काल जब सारा विश्व एक प्रकार से महामारी में जूझ रहा था, लेकिन कोरोना काल में कुछ ऐसी चीज़ों ने भी जन्म लिया जो अगर आप प्रज्ञा की दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि कृपा हुई। आश्रम में एक बड़ी, अब हम लोग को आदत है कि भाई बिना सुबह हम भोजन मिले ना मिले आश्रम के अंदर जाके समाधि के पास बैठने का जो परम सुख है तो वो मिस हो रहा था, क्योंकि बंद हो रही थी दीवारें, कपाट बंद थे। तो हम लोग कई बार कभी बालकोनी की तरफ जाके चुपचाप बैठ जाते थे, कुछ लोग ध्यान कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भई ये दरवाज़ा खुले कोरोना जाए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी ये कि मैंने ये नोटिस किया कि वास्तव में आप ध्यान कहीं भी कर सकते हो। बालकोनी में जा करके वहाँ भी ध्यान किया, हमारे डेजरे की छत के ऊपर, फिर अल्टीमेटली ये अंदर का द्वार खुल जाए। तो अब देखा जाए तो जो महेश्वरी, जो ज्ञान, ज्ञान नहीं विजडम, प्रज्ञा, हमारे यहाँ ज्ञान और प्रज्ञा में अंतर है। ज्ञान वो है जो हम सतही चीज़ों से हासिल करते हैं, किताब पढ़ लिया अक्सर, हालांकि वो पढ़े तो पांडित्य है, पढ़ के आपने उसको तर्क की दृष्टि से, रीज़न से एनालाइज करा तो वो ज्ञान हो गया। इसकी आवश्यकता है, इसको हम जीवन में डिस्पेंस, ये आइदर और नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की होती है जो तार्किक मन देता है कि या तो ये सही है या वो सही है, लेकिन प्रज्ञा ऐसे नहीं देखती है, इसीलिए प्रज्ञा का खेल कई बार समझ नहीं आता। वो प्रज्ञा कहती ये भी सही है वो भी सही है, तो आप कहेंगे ये कैसे, दोनों चीज़ें कैसे संभव हो सकती हैं। तो बड़ा सिंपल है, देखें तो संसार इतना सरल है, इतना सरल है, इसीलिए जितना अधिक हम भगवान की गहराई में उतरते हैं उतनी सरलता भी आती है, उतनी विनम्रता आती है। एक ज्ञानवान की पहचान विनम्रता होती है, क्यों, क्योंकि वो देखता है कि ओ माई गॉड, इतना महा, इतना अनंतता सामने है, तो वो स्वभाव से विनम्र हो जाएगा। इसी को हमारे उपनिषद कहती है कि अभिज्ञातम विज्ञानता, विज्ञातम अभिज्ञानता। तो अब प्रज्ञा कैसे इन दोनों चीज़ों को रिकनसाइल करती है, एक बस एक उदाहरण हम ले रहे हैं। माने इसको कहा भी है कि एक्सरसाइज हर व्यक्ति को करनी चाहिए अपने अंदर, मेंटल एजुकेशन में वो बताती हैं कि दो चीजें जो परस्पर विरोधात्मक दिखती हैं उनको रिकनसाइल करना भी अपने आप में एक प्रज्ञा का कार्य है, और उससे भी अधिक प्रज्ञा बड़े सरल ढंग से कहती है हाँ ये भी सही है ये भी सही है। तो आप कहेंगे दोनों कैसे सही हैं, कहती है, तो प्रज्ञा ये कहेगी कि अपनी अपनी जगह। अब देखिए सुनने में लगता है कि हम लोग कई बार ये तर्क सुनते भी हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन वो जगह कौन सी है ये हम नहीं जानते हैं। हर व्यक्ति हर चीज हर अवस्था हर चीज की अपनी जगह है, इसलिए इसको ऋतचित कहा गया। तो प्रज्ञा की जो दृष्टि है बहुत अद्भुत है, वो ऐसे नहीं करती कि ये सही है या वो सही है, ये सही है वो गलत है, वो तार्किक मन करता है और तार्किक मन का अपना स्थान है। जीवन में अगर आपके सामने सांप खड़ा हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि पहले मैं इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखूं, उस समय तार्किक मन की आवश्यकता है कि भाई सांप के चपेटे में नहीं आना है, तो वो ये नहीं कि सांप बुरा है लेकिन वो अपनी जगह मैं अपनी जगह, मैं इसके ज़्यादा करीब नहीं आ जाऊं। लेकिन प्रज्ञा जो है वो देखती है कि भाई ये भी तो शिव जी का स्वरूप है, हाँ दूर रहना चाहिए लेकिन उसका अपना स्थान है। तो इस तरह से जब हम तार्किक मन के ऊपर उठते हैं तब प्रज्ञा की भूमि है, और इसीलिए कहा गया है कि प्रज्ञा जो विजडम है महेश्वरी की, जो दो चीज़ें बताई जाती हैं, एक है विजडम और दूसरी करुणा, प्रज्ञा और करुणा। तो इस प्रज्ञा के लिए तार्किक मन को हम जितना शांत करेंगे, दो उपाय हैं, या तो उसको शांत कर दो या उसको उसका समुचित अंडरस्टैंडिंग दे दो, जिससे कि उसके बाद वो खुद ही चुप हो जाता है, वो समझ जाता है कि इसके आगे अब मुझे अनुभव में आगे बढ़ना है। क्योंकि जितना तार्किक मन के स्तर पे आप चीज़ों को समझ सकते थे या समझा सकते थे एग्जिस्टिंग डेटा के आधार पर, वो आपने समझ लिया। अब इसके आगे अगर आपको जाना है तो वो हम लोग सब जानते हैं कि प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि प्रज्ञा श्री अरविंद कहते हैं इज द आत्मा का ज्ञान है, वो है प्रज्ञा, यानी इज द स्पिरिट्स, उसका जो सोर्स है वो स्पिरिट है, और जो नॉलेज है जो साधारण ज्ञान है उसका जो सोर्स है वो माइंड है। तो माइंड तो डेटा ऑफ सेंसेस पर एनालाइज करता है, और इन दोनों के बीच में बुद्धि, बुद्धि इज नॉट इक्वल टू प्रज्ञा, क्योंकि प्रज्ञा एक बहुत ऊपर से चीज़ों को देखती है, एक साथ देखती है, तो उसकी जो दृष्टि है बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर जीवन में किसी के कुछ ऐसा होता है कि जो आम तौर पर हम लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, और फिर हम सीधा कहते हैं कि कहाँ है भगवान, सीधा हम मतलब बीच में कोई नहीं होता। हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गलती कर रहा होगा वो अफसर, लेकिन हम सीधा भगवान, भाई पहले वहाँ भी देख लो और भी लोग इन्वॉल्व हैं, कोई बीमार पड़ गया कहाँ है भगवान, कोई जेल में चला गया कहाँ है भगवान। अच्छा भगवान और हमारे बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं, तो उनको भी समझना आवश्यक है। खैर एक दृष्टि होती है जो बड़ी सीमित होती है और वो कहती कहाँ है भगवान, भगवान की सृष्टि में ये सब नहीं होना चाहिए, और उसका अपना एक औचित्य है। और एक दूसरी दृष्टि है जो ये देखती है कि ये जो उसके जीवन में घटित हो रहा है, इस समय ये रो रहा है बिलख रहा है, लेकिन इससे कहीं आगे जाकर इसका बहुत बड़ा भला होने वाला है। और हम लोग जानते हैं बचपन में भी ऐसे कई बार माएँ करती हैं, डॉक्टर लोग इस चीज़ को भलीभांति जानते हैं, वो हंसते हंसते इंजेक्शन दे देते हैं, मरीज रो रहा होता है, मरीज के माता पिता भी बिलख रहे होते हैं, तो क्या डॉक्टर पापी है या बुरा है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो कई बार हमारे अंदर कई चीज़ों का शमन करने के लिए प्रज्ञा जैसे कार्य करती है। एक बार यहाँ पे कोई सज्जन थे जिनको माताजी ने कहा कि नहीं बेहतर है कि तुम आश्रम छोड़ के चले जाओ, तो उसको ये लग रहा था कि मेरी क्या गलती है। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टेटमेंट है, मतलब ये आम तौर पर आश्रम के कंटेक्स्ट में सुना नहीं गया है। तो उसने नलिनी दास से पूछा कि मैं मिलना चाहता हूँ, आप फिर से मिलाइए मुझे, मैं फिर से बात करूँगा। तो नलिनी दास कहते हैं कि यदि माँ ने ये कहा है तो तुम इसको स्वीकार करके चले जाओ, ये तुम्हारे हित के लिए है, इसको तुम अभी नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे हित के लिए है। 15 साल बाद उन्होंने यही बात स्वीकार करके आके कहते हैं, उस दिन जो आपने केवल इतनी सी एडवाइस दी थी, इतनी सुंदर एडवाइस दी थी, ये वास्तव में मेरे हित के लिए था। जो उसका डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, अब अगर इस घटना को हम बाहर से देखें तो हमको ये लगेगा कि आखिर अगर उस व्यक्ति के ने कुछ उसकी समझ के अनुसार बुरा नहीं किया था तो क्या करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि तुम्हारी बुराई क्या है। आमतौर पर हम ये कहेंगे, लेकिन ये प्रज्ञा कैसे ऑपरेट कर रही है? प्रज्ञा ने ये देख लिया, माँ की प्रज्ञा ने, कि यदि ये यहाँ रहेगा तो ये इसकी जो दृष्टि है इस समय जीवन को देखने की, उस दृष्टि से वो हर चीज में, वो कहते हैं ना, कोई मीन मेक बुरा, और वो कुछ भी प्रगति नहीं करेगा, वो उसी में उलझा रहेगा। और उसको दूर करने के लिए, क्योंकि हाँ शक्तियों का खेल बड़ा इंटेंस है, उसको दूर करने के लिए माँ ने उसको थोड़ी दूर किया है कि तुम वहां पे अपने आप को डेवलप करो, फिर यहां पर आओ। ये कई बार होता है, हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि वो, हम जब बहुत करीब होते हैं किसी सत्य के तो हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि सत्य की जो वर्किंग है बहुत इंटेंस होती है। हम उस चीज को बाहर से एनालाइज करते हैं, बाहर से देखते हैं, हम केवल अपने दुख से संसार को जज करते हैं, ईगो को केंद्र में रखते हैं और भगवान की प्रोसेस को समझने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब आप इसी चीज को एक वृहत दृष्टि से देखते हैं तो बिल्कुल दृष्टि बदल जाती है। एक यहाँ पे हुई थी सुनामी, तो उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, श्री अरविंद की एक कविता भी है उस पर, द लॉस्ट बोट, तो पीपल शुड रीड इट, बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ वो यही इसी बात की बात का जिक्र करते हैं कि मैंने देखा कि नाव जा रही थी और नाव फिर डूब गई, विलुप्त हो गई, तो हाहाकार मचा, चीख पुकार मची कि अरे नाव डूब गई, लोग मर गए, ये न्यूज़ हेडलाइन बनती है। कहते लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि उसमें जो मृत हुए वो कहाँ गए, कैसे गए, आगे की उनकी यात्रा क्या है। तो सुनामी के समय हम लोगों ने इस बात को देखा, यहाँ पर तो खैर माँ की अद्भुत कृपा थी कि आस पास सब जगह सब कुछ नष्ट हो गया, लगभग केवल ये 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आश्रम का केंद्र, ये भी है महेश्वरी के कार्य है, ऐसे सुरक्षा उनको पहले से ही ज्ञान होता है घटनाओं का, तो ये बच गया आश्रम का एरिया और आसपास थोड़ी दूर तक। यहाँ तक कि आश्रम में हम लोगों को तो लगा कि अरे कैसे पानी, हम लोगों ने ये सुना कि समुद्र बहुत पीछे चला गया, तो लोग देखने गए एक्चुअली कि समुद्र पीछे चला गया है, तो अद्भुत घटना है। सुनामी का किसी को ज्ञान नहीं था, उसके बाद सुनामी भी आई, पर वो बस अच्छा आई, थोड़े छींटे पड़े बीच पर फिर चली गई। हम लोगों को ये पता नहीं था। शाम की न्यूज़ जब लगाई तो उसे पांडिचेरी कॉल आ रहे हैं, मेरे मित्रों के कॉल आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं कि सुनामी आ गई, तुम लोग कैसे? उन्होंने कहा कौन सी सुनामी? तो उन्होंने बताया, फिर हमने टीवी चैनल पे न्यूज़ लगाई। तो अब लेकिन अब ये घटना होती है कि बहुत कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई उसके बाद। अब हुआ क्या कि कई लोग थे जो समुद्र के पास थे, विस्थापित हुए, उनके मड हाउसेस डिस्ट्रॉयड हुए। पूरी घटना को अगर आप 10 साल के उसमें देखेंगे तो लोगों के पक्के घर बने, नई जगह, मतलब जो बचे, जो गए उनकी आगे की यात्रा हम नहीं जानते, वो हमारी अज्ञान की सीमा है। तो कई बार कई चीज़ें हैं जो हमको देखने से उस समय तत्कालीन हमारी तर्क बुद्धि उनको नहीं समझ पाती। और इसके में कई उदाहरण, मतलब इनके उदाहरणों पर एक पूरा दिन निकल सकता है, जीवन में होते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम उसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं तो हमको ये आश्चर्य होता है कि जीवन में ये प्रज्ञा कैसे कार्य कर रही थी, इसको कैसे मालूम था कि मेरे अंदर ये समस्या है, इसका शमन आवश्यक है। फॉर इंस्टेंस गीता, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसी प्रज्ञा से ही जुड़ी हुई चीज़ है कि अर्जुन धुरंधर है, ओरिजिनल धुरंधर, ओके, धुरंधर पार्ट इन्फिनिट ओरिजिनल, मतलब अर्जुन जैसा धुरंधर कोई हुआ नहीं है। और उनके अंदर ये क्या निकल गया, अचानक युद्ध के पहले लगभग रो रहे हैं, नहीं मैं नहीं मारूंगा, ये मेरे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, हालांकि वो लड़ चुके हैं, विराट युद्ध सब कर चुके हैं, उनको किसी प्रकार का डर नहीं है, सारे दिव्यास्त्र हैं, ये क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? तो अगर उस समय कोई फ्रीज टाइम कर देता तो वो कहता कि ये क्या हो रहा है। मैं कुछ केवल उदाहरण कि प्रज्ञा कैसे ऑपरेट करती है। फिर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण गीता का जन्म होता है। श्री अरविंद इसके पीछे का सत्य बंगला रचना में बताते हैं, गीतार भूमि का, कहते हैं ये श्री कृष्ण का ही किया कराया था कि अर्जुन के अंदर ये जो छुपे हुए भाव थे ये बाहर निकलते हैं। क्यों बाहर निकले? अरे भाई अभी बाहर निकल जाओ, 10वें दिन तुम्हारे अंदर ये भाव अगर आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप युद्ध के बीच में हैं। तो उन्होंने वो सारी चीजें, श्री अरविंद बताते हैं, वैष्णवी माया से उनको निकाला बाहर, उसके बाद संसार को उपहार में क्या मिला, श्रीमद् भगवद गीता। ये एक जागृत उदाहरण है महाभारत का कि उस समय अगर आप लोग पूछते, अभी भी कई लोग उससे चिपके रहते हैं, अरे इतना नाश हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नाश हुआ, सब हुआ, उस समय बहुत लोग रोए बिलखे, लेकिन जब आप आज देखते हैं तो कौन मरे कौन बचे इसका हिसाब किताब नहीं है लोगों के पास। लोग ये भी सोचते हैं पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, है ना। दो चीज़ें पूरी महाभारत के गिफ्ट के रूप में आई जो संसार बदलने वाली थी। एक था विराट रूप का दर्शन जो मनुष्य के अंदर अंकित हो गया, और दूसरी है श्रीमद् भगवद गीता। देखिए इट सर्वाइव्स द होल प्रोसेस एंड कम्स। यही चीज ट्रोजन वार में शेरविंद बताते हैं कि ट्रॉय बहुत ही ये कि प्रज्ञा कैसे कार्य करती है, वो किस दृष्टि से देखती है, क्योंकि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक लंबा स्पैन देखती है, वो एकदम इमीडिएट चीज को नहीं देखती है। उसके लिए हमारे पास महासरस्वती हैं, मल्लम लेप लगाने के लिए, प्रेम से भरने के लिए महालक्ष्मी हैं, हारमोनी लाएंगी, ज्यादा रोए कल पे ये तो महाकाली हैं, कहेंगी चुप करो श्रद्धा रखो। लेकिन महेश्वरी की जो विजन है ट्रोजन वार के बारे में बताते हैं। अब ट्रोजन वार में अगर आप इसको एक एक घटना को देखें प्रारंभ में, तो हम लोग नॉर्मली पाप पुण्य के हिसाब से देखते हैं, लेकिन प्रज्ञा पाप पुण्य के हिसाब से नहीं देखती है। भगवान की करुणा पाप पुण्य देखेगी तो वो संभव नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कैसे देखती है ट्रोजन वार, अगर आप देखिए तो हेलेन जाती हैं ट्रॉय में, प्रायम की पुत्री हैं, और ट्रॉय बहुत ही डेवलप्ड साम्राज्य है। आसपास की जो ट्राइबल्स हैं बिल्कुल वही ऐसा लगेगा जैसे आप बंबई में अगर अंबानी जी का घर देख लीजिए, अटेलियर, उसके आसपास तो आपको जो घर है ना फ्लैट्स वगैरह लगे हैं झोपड़पट्टी, तो आपको बहुत अजीब लगेगा, लगे कि जैसे कोई क्या अजीब सी चीज खड़ी हो गई। एक्चुअली इट्स वेरी आउट ऑफ प्लेस, यू फील दैट। मतलब मैं गुजरा हूँ, मैंने कहा ये क्या है, मतलब कोई अंदर जाके नहीं बाहर से अजीब लगता है कि कोई। तो ऐसे ही था ट्रॉय का साम्राज्य, या अभी का अगर आप अमेरिका देख लें कि एक साम्राज्य जो बड़ा भव्य है, और ट्रॉय तो सभ्य भी था अनलाइक अमेरिका, तो वो सभ्य और भव्य दोनों दृष्टि में, लेकिन आसपास में जो ग्रीक्स हैं वो ट्राइबल कॉलोनीज हैं। अब भगवान क्या करते हैं, प्रज्ञा क्या करती है, हेलेन स्वयं बाहर से अब आप देखेंगे तो कैसे जज करेंगे, कहेंगे अरे ये क्या दिखा रहे हैं, ये पेरिस गया लेके भाग गया, ले आया आपने यहाँ, ये तो बहुत बुरा किया उसने, वैसे अपनी इच्छा से गई थी, इज द ओरिजिनल लव मैरिज का जो कंसेप्ट है। तो लेके आते हैं और उसके बाद जो होता है वो अद्भुत है। ट्रोजन वार में ट्रॉय समाप्त हो जाता है, लेकिन इतिहास क्या कहता है किसी को नहीं मालूम, ट्रोजन वार हुआ कि नहीं। मेनेलॉस का कप मिल जाता है तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं हुआ था, लेकिन इतिहास एक चीज को स्वीकार करता है कि इस समय के आसपास एक नए कल्चर ने जन्म लिया जिसमें विज्ञान और कला दोनों का अद्भुत संगम था, जिसको हेलेनिज्म कहते हैं। अभी भी आप ग्रीस में जाके अगर बोलेंगे ना ग्रीक, वो बहुत बुरा मान जाएगा। काश एक दिन हम लोग भी इंडियन कहने से कहें भैया हम भारतीय हैं। आप ग्रीस में जाकर अगर बोलेंगे ग्रीक, यहां बोल लीजिए, ही विल टेक ऑफेंस, ही इज हेलेनिक। वो हेलेन के नाम से अपने को कनेक्ट करता है, हेलेनिज्म एक कल्चर है, वो एक पूरी जीवन की दृष्टि है। तो ये प्रज्ञा का कार्य, विजडम का जो कार्य है वो केवल हम सतह से नहीं होता है, मुख्य चीज यही है, और उसमें अपार करुणा होती है। लेकिन करुणा साधारण दया और पिटी नहीं है। करुणा का अगर एक उदाहरण ले तो जो डॉक्टर चीरफाड़ करता है वो करुणा है। अगर वो केवल दया करेगा कि ओ मुझे काटना पड़ेगा तो कभी नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर करुणा है। तो यहाँ पर अब हम लोग दो चार पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सुंदर, जस्ट टू गिव ए फ्लेवर। एक चीज और बताते हैं शेरविन, जब इन देवियों की या महादेवियों की बात होती है तो स्वाभाविक है कि हम लोग अपने ही कल्चर से जुड़े हैं और जुड़े होना चाहिए। तो लेकिन ये देवियां क्या भारतवर्ष तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। और किसी ने भी अगर विश्व का इतिहास पढ़ा है, खासकर वो नहीं जो बाद में वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंडर लिखा गया, पर अगर आप इसके मूल में जाएंगे तो बहुत ही अद्भुत लगेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, हम सबने पढ़ी होंगी अरेबियन नाइट्स, पढ़ी सुनी होगी, बहुत अद्भुत है। थाउजेंड एंड वन टेल्स शेरविंद ने की, वन ऑफ द फेवरेट्स अरेबियन नाइट्स। तो सबको लगता है अरेबियन, अच्छा अरब की डेजर्ट में, बिल्कुल नहीं, उसका ओरिजिन पर्शियन और सांस्कृत हिंदू कल्चर है। अब जब आप इस दृष्टि से जाके देखेंगे देन यू विल सी मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इनसाइड। और सारी जिन पर हम लोग पोषित हुए, सिंधबाद की यात्रा, बाद में अलिफ लैला के नाम से आई, लेकिन वो जो अली बाबा और 40 चोर, अब ये बहुत ही एक समय था जब आप, वो नाम अलग होते थे लेकिन अगर आप उनके नाम के पीछे जाएंगे देखेंगे वही सत्य है। अब यहां श्री अरविंद पेज नंबर 8 पे ये लिख रहे हैं, समस्त सृष्टि के दो पहलू होते हैं, साकार और निराकार। एकता निराकार के साथ साथ, देवता निराकार के साथ साथ साकार भी होते हैं, लेकिन देवत्व बहुत से रूपों रूप ले सकता है। यहां महेश्वरी, वहां पलास एथिनी, यूनान की देवी। देखिए अच्छा हुआ हम लोगों ने ट्रॉय की बात कर ली। एथिनी विजडम की देवी है और वो ओडिसियस के साथ रहती हैं। ओडिसियस जो युद्ध होता है उसमें वो एक ऐसा योद्धा है जो सबसे वाइज उस समय, मतलब नॉट सोक्रेटिस लेटर ऑन, लेकिन वो वाइज माना गया, उसकी बात लोग सुनते थे। और ओडिसियस सदैव एथनी से इंस्पायर्ड होता है, उसमें दिखाते भी हैं कि एथनी कहती ये मेरा चहेता है। तो महेश्वरी हैं सेम, अगर आप उनके कर्म कुछ हद तक उनकी छवि भी महेश्वरी से मिलेगी। स्वयं महेश्वरी की आपके अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों में विभिन्न रूप होते हैं, दुर्गा, उमा, पार्वती, चंडी इत्यादि। देवता मानव रूप तथा आकारों में सीमित नहीं होते, मनुष्य भी उन्हें हमेशा केवल मानव रूपों में नहीं देखता। अद्भुत बात है, प्रारंभ में ही शेरविंद स्पष्ट करते हैं। फिर ये साकार निराकार के अलावा आगे एक और पैसेज है, ये पेज नंबर 13, कि भगवान की जो ये प्रज्ञा कैसे काम करती है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जान जाए ना, जीवन बड़ा आनंद में होता है कि कई चीजें जो हमको दुख देती हैं क्योंकि हम तार्किक मन बाहर बाहर से देखता है, लेकिन जब प्रज्ञा जागती तो वो कैसे दिखाती है। पेज नंबर 13 पर श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, सूत्र है, जब मैं दूसरों को दुख भोगते हुए देखता हूं तो अनुभव करता हूं कि मैं अभागा हूं, परंतु वह प्रज्ञा जो मेरी नहीं है आने वाले शुभ को देखती है और उसका अनुमोदन करती है। लेकिन इसमें एक कैच है, शेरविंद क्या लिख रहे हैं, जब मैं दूसरों को दुख भोगते हुए देखता हूं तो अनुभव करता हूं कि मैं अभागा हूं। बात बात में लिख देना, लेकिन उसके भी आगे कहते हैं जो प्रज्ञा मेरी नहीं है, प्रज्ञा को आप ओन नहीं कर सकते। ये चारों जो महादेवियां हैं ना, दे ओन अस, वो पूरी ट्रोजन वार में दिखाते हैं कि इतना कहती ये मेरा बच्चा है ओडिसियस। ये नहीं कि मैं, ओडिसियस जानता भी नहीं है, वो उसको इंस्पायर करती हैं, बड़ी सुंदर है वो। अब ये प्रज्ञा क्या है, मां से पूछा है, प्रश्न किया है किसी ने, यह सर्वोच्च बुद्धिमता है, सर्वोच्च भगवान की बुद्धिमता है। इसीलिए मां, आपने देखा होगा आश्रम में डाइनिंग रूम में, ये अपने आश्रम में ही लिखा हुआ है नोटिस बोर्ड पर, व्हेन यू कैनॉट अंडरस्टैंड समथिंग, आश्रम के कंटेक्स्ट में, इट इज बेटर टू रिमेन साइलेंट, क्योंकि हमको पता नहीं। ऐसी ऐसी यहां अद्भुत घटनाएं हैं। एक व्यक्ति था जो अब ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, पर वो ड्रिंक करता था। किसी ने वहां से पूछा, आपने इसको रखा क्यों है, माँ कहती हैं कि एक्चुअली तुम्हें मालूम नहीं है, शिष्य को बताती हैं, ये अगर हिमालय में होता ना बहुत बड़ा योगी होता। इसने अपने अंदर जो इसकी समस्या है अल्कोहल की, उस समस्या को अपने अंदर धारण किया हुआ है संसार के कल्याण हेतु। तो प्रणबदान के तो राइटिंग्स में है, ही कुड हैव बीन इंटेलेक्चुअली वेरी डेवलप्ड, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भौतिक, तो उन्होंने भौतिक जड़ का जो सबसे कठोर रूप है उसको अपने अंदर धारण किया। तो हम लोग ये चीजें नहीं देख पाते हैं, भगवान इसको देखते हैं और उसके अनुसार वो, ये नहीं कि सारे जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं वो संसार की प्रॉब्लम है, ये हमारा तार्किक मन भी एक से एक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान की दृष्टि बहुत अलग होती है, हमारी दृष्टि भिन्न होती है। बाली ने ये पूछा था वैसे, भाई दिवे बाली ने यही पूछा था कि क्या अंतर है मुझमें और सुग्रीव में। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कहो नाथ मम काहे मारा। मुझे क्यों मार डाला, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आपके साथ तो मेरा कोई वैर नहीं, आपके से संधि करने को मैं तैयार हूं। क्यों संधि करने को तैयार हूं, पावर चाहिए, पता है अयोध्या के राजकुमार हैं, संधि करूंगा तो मेरी बड़ी उन्नति होगी। वो तो रावण से संधि करने को भी तैयार था वो चीज, लेकिन श्री राम नहीं बताते हैं कि तेरा भविष्य मैंने देख लिया था। ही वॉन्टेड टू मेक संधि विद रावण एंड रावण ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक संधि विद हिम। और तभी तो वो, जब बाद में ये सब टूट गया, बाली मर गया, तो तभी जब हनुमान जी जाते हैं तो रावण कहते हैं, अरे तुम अंगद को कहते हैं, हनुमान जी के पहले अंगद जब जाते हैं बाद में, अरे तुम तो बाली के पुत्र हो, मेरा मित्र है, तुम हमसे मिल जाओ। दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट वॉज प्लान ऑफ रावण विद रिगार्ड टू बाली। कितना भयंकर होता, जस्ट कल्पना कीजिए, वानर राज और राक्षस राज मिल जाते, असुर राज, तो भारत का जो मानचित्र आने वाले पता नहीं किस कितने समय तक बिल्कुल अलग होता, शायद हम अमेरिका जैसे कुछ बन जाते। सोने की लंका यही है ना, और इस अंदर में कितने विक्षिप्त हो जाते। तो ये, लेकिन रामायण के प्रसंग में ये सब नहीं बताते राम जी, वो कहते तुम तो बहुत दूध के धुले अपने आप को, और फिर वो कहते कि मैंने इससे मित्रता की है, मित्रता का ये धर्म है, जो रियल स्टोरी है उनके बैकग्राउंड में है। तो ये प्रज्ञा क्या है, मां कहती है ये सर्वोच्च बुद्धिमता है, सर्वोच्च भगवान की बुद्धिमता है, ये वर्तमान भूत और भविष्य को समान रूप से देख लेती है। इसीलिए हमारे यहां कल्याण श्रद्धा की बात की है बार बार श्री अरविंद, योग में कल्याण श्रद्धा। कल्याण श्रद्धा क्या है, आपके अंदर हो रही है इस समय घटनाएं जिसको नहीं पता चलता है, आप प्रतीक्षा करें, भगवान पर श्रद्धा रखें, और श्रद्धा रखेंगे तो आप देखेंगे कि अंत में एवरीथिंग विल टर्न आउट ब्यूटिफुल, मच बेटर देन व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड, हमारी कल्पना के परे। लेकिन हमारा जो एक पीड़ित मन, बहुत ही विक्षुब्ध मन, जो तत्काल रिजल्ट चाहता है, और ऊपर से आई मे ऐड कम्युनिस्ट मन, दिमाग को पूरी तरह खा गया है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म डीपर ट्रुथ को नहीं देख पाता है, वो केवल इमीडिएट कंसर्न। तो यहां पर एक कम्युनिस्टों में भी भगवान है, गलत रूप से प्रयास कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। हम सब मानते हैं कि सब समान है, लेकिन समान क्यों है, क्योंकि दिव्यता का आधार है, ये क्लियर कर देना, कल को कोई कम्युनिस्ट ऑफेंस ले ले। लेकिन भौतिक रूप से समान है, ये तो आपने पशु बना दिया सबको, हमारे अंदर कॉमन पशुत्व है ये सच है, पर उससे भी बड़ा सच है कि हमारे अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस है जो सब में समान है। तब उस आधार पे जब आप हायरार्की समझते हैं तो अलग ढंग से समझते हैं। अब उसमें क्या है, अलग अलग डिग्री है सेल्फ रिविलेशन की। अब देखिए, अब हायरार्की का मतलब ही बदल गया कि जिस जो, और हमारे यहां ये स्पॉन्टेनियस नॉलेज है, सबसे ज्यादा हम किसको मानते हैं आदरणीय, वह जो अधिक से अधिक भगवान से जुड़ा है, हम उसकी जात नहीं पूछते, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, इनबिल्ट है कि द ग्रेटर द विजडम द ग्रेटर द पर्सन, बाहर से हम नहीं देखते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है, ये समस्त कार्यों के कारण और समस्त कारणों के कार्यों को जानती है। श्री अरविंद के पत्र हैं जब मृणालिनी देवी को, कि कई बार भगवान अशुभ से शुभ को जन्म देते हैं, जब उनके भाई की डेथ होती है, कहते हैं ये संसार में ये सब है, लेकिन तुम्हें स्मरण रहना चाहिए कि कई बार बाहर से जो हमको अशुभ दिखाई देता है, भीतर उसके शुभ छिपा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, वी वांट शॉर्टकट्स, हमको जहां दिखा, हम क्या, हम उस चूहे की तरह हैं मेज के अंदर, ये यहां प्रॉब्लम है उधर ले लो, वहां प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपको आएगी, प्रॉब्लम आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो हम भागते रहते हैं एक प्रॉब्लम से दूसरे, अंत में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में उलझे हुए एक सिनिक बन जाते हैं, संसार बेकार है, या थोड़े दो चार विष और क्या कहते हैं अमृत तो नहीं, मिठाई, विष से सनी हुई मिठाई खा लेते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमको मिठाई मिल गई, बाद में विष का असर होता है। लेकिन ये एक प्रज्ञा है जिसने अरेंज किया है सरकमस्टेंसेस। एक जगह माँ बताती हैं बड़े सुंदर ढंग से कि शेडोज की बात करती हैं, हर किसी के अंदर कोई एक चीज होती है जो उसकी पर्टिकुलर कठिनाई है, और माँ कहती हैं यू डू नॉट नो दैट इट इज ए सुप्रीम विजडम दैट अरेंजेस दीज थिंग्स। वो आपकी कठिनाई है, दूसरे की नहीं होगी, आपको वो दी गई है, आपका गिफ्ट है, आप इसको खोलो, परतों के अंदर भगवान को ढूंढो। कई लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप की कठिनाई होती है, तो क्या करते हैं, बदलते जाते, कहते हैं भाई प्रेम होता ही नहीं, हम भगवान की ओर जा रहे हैं। अब भगवान का सलूशन क्या है, अरे यार भगवान को देख लो, सब में देख लो, जय माता दी करो, आप जा। अब देखिए ये दृष्टि आपकी बदलेगी ना, आपके अंदर से चीजें, कई चीजें हैं जो छूट जाएंगी, क्योंकि वो डिजायर बेस्ड फिर नहीं रहेगा, वो तो आपकी एक दृष्टि बदल गई। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो प्रज्ञा जानती है, और वो आपके जीवन के जो सर्कमस्टांस है उसके पीछे एक विजडम काम करती है, और उस विजडम को समझना चाहिए। ये समस्त कार्यों के कारण और समस्त कारणों के कार्यों को जानती है, ये सारी परिस्थितियों के जिस योग फल को उनकी समग्रता में एक साथ देख लेती है, वह उसे प्रकृति का एक उत्कृष्ट प्रयत्न प्रतीत होता है, जो भगवान को अधिक अधिक व्यक्त करने तथा उससे भागवत पूर्णता की ओर ऊपर ले चलने के लिए किया जाता है। और तभी लोग बाद में, बहुत बाद में जब प्रज्ञा आती, कहते हैं थैंक यू फॉर ऑल द मिसफॉर्चून्स। श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है, ओ मिसफॉर्चून ब्लेसेड आर्ट दाउ फॉर दाउ हैस्ट मेड मी सी द फेस ऑफ माई बिलवेड। ये आएगा और तब आपको हर चीज में प्रसन्नता, जॉय, क्योंकि आपने भगवान को देख लिया। यही वो शुभ है जो निकट आ रहा है, इसी को, इसी की ओर सब बढ़ रहे हैं, इसीलिए सच्ची बुद्धिमता इसे पसंद करती है। कारण हमारा संकीर्ण दृष्टिकोण, हमारा अत्यधिक संकुचित ज्ञान और हमारे पथभ्रांत संवेदन ही हमारे लिए उस चीज को, जो उन्नति की एक संभावना और अवसर है, कष्ट में बदल देते हैं। सोच है, सोच का अंतर है। एनीवेज वी ऑल गो थ्रू दिस बाद में, और इसलिए वो कहते भी कि जब जहां बुद्धि समाप्त होती सीमा, वहां प्रज्ञा प्रारंभ होती है। फिर एक और चीज हम लोगों ने, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये पेज नंबर 17 पर है। श्री अरविंद ने जो चीजें ज्ञान, तर्क, बुद्धि और प्रज्ञा के विषय में लिखी हैं, अच्छा प्रज्ञा को डेवलप करने का मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय, मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा प्रज्ञावान हूं, लेकिन जो उपाय उपयोग में लाया है जो रियली बहुत अच्छी है, अंततः तो माँ की कृपा से होती है, लेकिन थॉट्स एंड एफोरिज्म्स एक्सीलेंट, परफेक्ट रेसिपी। वो क्या करती हैं, आपको चैलेंज करती हैं, शॉक करती हैं और मन के दरवाजे खोल देती हैं। अब हम लोग एक एफोरिज्म पढ़ेंगे, जिसे मनुष्य ज्ञान कहते हैं वह मिथ्या बाह्य रूपों को युक्ति द्वारा स्वीकार करना है। देख रहे हैं हम जीवन में ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको लोग कहते ज्ञान, हमको पता चल गया, छिपा रहे थे ना सारी बात, हमको पता चल गई, आपके सारे SMS का डेटा हमारे पास है। अरे भाई ये ज्ञान नहीं है, ये तो आपको और उलझा रहा है। प्रज्ञा पर्दे के पीछे तक दृष्टि दौड़ाती और देखती है, तर्क बुद्धि ब्योरों को निश्चित करती और उनका अंतर बतलाती है, तर्क बुद्धि विभक्त करती है और प्रज्ञा विभेदों को एक अखंड साम्राज्य के अंदर पिरो देती है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है इतने सुंदर ढंग से कि जैसे जैसे वो विजडम आती है यू जस्ट वंडर कि ये सब चीज अपनी जगह अपने ढंग से भगवान अद्भुत कार्य करते हैं। अगेन मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा हूं इसमें नॉट टू फ्लो, क्योंकि इतने एग्जाम्पल हैं इसके, आधुनिक जीवन में भी मिलेंगे, इतने उदाहरण हैं कि आप लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि अरे जो हुआ वही अच्छा था। साधारणतया बहुत थोड़े से विरल अपवादों को छोड़कर अधिकतर मनुष्य अपने चारों ओर तथा कभी कभी अपने अंदर होने वाली चीजों को कम या अधिक यथार्थ रूप में देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और अपने अवलोकनों को छिछले तर्क की किसी न किसी पद्धति के द्वारा श्रेणीबद्ध कर देते हैं। श्रेणीबद्ध है, अच्छा है, बुरा है, और इन्हीं पद्धतियों को, इसी व्यवस्था को ज्ञान के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं ना हम लोग, अरे उसके साथ बहुत बुरा हुआ, अरे कर्मों का लेखा जोखा, अरे भाई पहले निश्चित तो कर लो बुरा हुआ कि नहीं हुआ। एक 21 साल की उनकी मृत्यु हुई थी, गायिका थी उमा बोस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद से पूछा कि इतनी राइजिंग वॉइस, इतनी सुंदर अद्भुत वॉइस, व्हाई डिड सच ए थिंग हैपन टू सच ए वंडरफुल पर्सन। सात्विक, बहुत सात्विक भाव था उसमें। तो पहले तो श्री अरविंद जो लिखते हैं वो एक रिडल ऑफ द वर्ल्ड नाम की अब पुस्तक के रूप में अवेलेबल है, वो बहुत बड़ा पत्र है। अंत में वो ये सब बैकग्राउंड बता के बताते हैं, उमा बोस सात्विकता की पीक पर पहुंच गई थी यंग एज में, और उनके अंदर अब और आगे बढ़ने की संभावना आ गई थी। अगर वो इस जीवन में चलती रहती इसी प्रकार से तो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करती और सत्व रजस के बीच में एक पूरा जीवन चला जाता। शी टुक ए लीप। अब ये तो हम लोग, शी टुक ए लीप, ये हम लोग नहीं समझ पाते कि अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों? अच्छे व्यक्ति के साथ उसको खूब पैसे मिलने चाहिए, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, यही हमारी अच्छे भगवान का रिवार्ड, की जो हमारे रिवार्ड है वही भगवान के रिवार्ड। भाई पढ़ लो महाभारत, क्या किया पांडवों के साथ, बड़े अच्छे थे बेचारे। पर आज पांडवों के नाम से लोग नाम रखते हैं, तो ये भगवान का तरीका है कि उसमें बहुत लॉन्ग टर्म चीजें हैं और वो सब एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं होता, उनमें इस बोध का आरंभ तक नहीं होता कि जिन चीजों को वे देखते, छूते, अनुभव करते और स्वीकार करते हैं वे मिथ्या बाह्य रूप हैं, स्वयं सद्वस्तु नहीं। किसी ने पूछा, एक पुस्तक के रूप में है अब तो, ड्रीम डायलॉग विद श्री अरविंदो, निरोधा की है तो हमको उसको एक तरह की मान्य देना पड़ेगा। वो एक्चुअल डायलॉग नहीं है, पर उनके अंतरदर्शन में या स्वयं के ही अंदर एक प्रकार का बोध जगा है। तो उसमें वो बताते हैं कि मैंने श्री अरविंद से पूछा, ये पूछा नॉट फिजिकली, कि भाई भगवान क्या करते हैं, द्रौपदी के साथ ये सब क्यों हुआ। तो श्री अरविंद कहते हैं उन्हीं के साथ जो उनका अंदाज था, कि नीरज कब से मैं तुम्हारी इस ठोस बुद्धि के अंदर थोड़ा तरल बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ, तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ आई। तो कहते हैं नहीं समझ आई, क्यों किया। कहते हैं वह एक कृत्य था कौरवों का जिसने पूरा पासा पलट दिया, सारी जो भी शक्तियां उनके साथ खड़ी थी उनके विरोध में खड़ी हो गई, द हायर फोर्सेस जो डिटरमाइन करती हैं आपकी डेस्टिनी को। फिर वो कहते हैं वरना तुम्हें क्या लगता है कि भीष्म द्रोण इत्यादि के उधर रहते हुए यूं ही जीत जाते पांडव। इस पर तो अभी किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी बनाई है, और कैसे कृपा, और इसमें ये भी करुणा और कृपा कैसे कार्य करती है, तो वी विल टॉक अबाउट इट जब हम लोग वहाँ पर आएंगे। हैं हमारे पास 10 मिनट तो कम से कम पढ़ने के हैं, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। फिर अनुकंपा, कृपा, कृपा इज ग्रेस, कंपैशन इज अनुकंपा। तो श्री अरविंद इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अनुकंपा जो नेट में फंसे हैं उनके अंदर पहुँच के उनको बचाती है, कि ये जाल में फंसे हैं, कईयों को जाना है, कुछ को निकलना है। कृपा नहीं कैलकुलेट करती है। एक बार माता जी से किसी ने पूछा ये कि एक माता जी से पूछने के पहले, उसकी एक पार्श्व कथा है, आई थिंक डेनमार्क से कोई व्यक्ति आया था, मैं भूल रहा हूँ कहाँ से, पर यूरोप के किसी देश से। तो उसने एक बार एक साधक से पूछा कि मेरे अंदर तो योग का इसका कोई खास वो नहीं है, पर माँ मेरे प्रति इतनी काइंड हैं, इतनी अच्छी हैं, क्यों? एक बार ये प्रश्न मेरे भी किसी परिचित ने किया था, तो खैर वो बाद में। तो फिर एक साधक ने माँ से पूछ, उसको जो उत्तर दिया, माँ को बताया मैंने उसको ये उत्तर दिया, उसने उसको ये उत्तर दिया, शायद माँ ने तुम्हारे अंदर कोई संभावना देखी होगी जो अभी तुम्हें पता नहीं चल रही है। बड़ा खुश हुआ, वेरी टैंजिबल, लॉजिकल। और उसने बड़े गर्व से माँ को बताया कि मैंने उसको ये कहा। माँ चुप हो गई, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अगले दिन कहती हैं, भागवत कृपा, भागवत अनुकंपा ये कैलकुलेट नहीं करती है, वो तो देती है। वो आया, मैंने दिया, मेरा तो काम यही है। मैं वहां ये कैलकुलेट, देखिए अब मानवीय कैसे सोचता है कि देखो उसमें क्या है ऐसा खास कि माँ ने उसके साथ, अरे माँ किसके साथ नहीं अच्छा व्यवहार करती है, वो करुणा से भरा हुआ, ये उनका भगवान का ये चरित्र है कि वो कैलकुलेट किए बिना देते हैं। आप क्या रिसीव कर सकते हो, नहीं रिसीव करती है, ये आपकी समस्या है, ये हमारी समस्या है, क्योंकि हम तो हिसाब किताब में लगे रहते हैं। ये तो तुलसीदास जी ने कहा है ना बड़ा सुंदर, राम सो स्वामी को सेवक मोसो, आपकी कृपा को आप देखते हो तभी मेरे जैसा को पोसते हो, अगर मेरी तरफ देखोगे तो कोई आशा नहीं रहेगी। ये कोई भगवान कोई कैलकुलेट नहीं करते कि भाई कर्म ये ज़्यादा विशेष है, ये बनेगा नहीं, वो पोर करते हैं। आपने ले लिया तो ले लिया, और आपने हिसाब किताब करने लगे कि ये पियो कि नहीं पियो, अमृत है कि विष है कि कहीं ये, तो करिए वो तो, इट गोज ऑन। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, बट वी नीड नॉट गेट इनटू इट। अनुकंपा, ये पेज नंबर 21 पर है। जब सत्ता में चैत्य चेतना सर्वसमर्थ हो, तभी उन सबके लिए जिन्हें किसी भी रूप में सहायता की आवश्यकता हो, अनुकंपा और जो कुछ किसी भी रूप में भागवत उपस्थिति और कृपा को प्रकट करता है, उसके प्रति कृतज्ञता अपने मौलिक उज्ज्वल शुद्ध रूप में प्रकट होती है। भगवान की करुणा और अनुकंपा, करुणा इज ए वर्ड जिसे हम सब परिचित हैं, तो कैसे पता चलता है कि भगवान की करुणा है और ये अनुभव कर रहा है? कौन खुला है करुणा के प्रति, जो हर चीज में कृतज्ञता महसूस करता है, अनुभव करता है, ये एक साथ चलते हैं। करुणा भगवान की तरफ से, कृतज्ञता मनुष्य की तरफ से। और जितना कम हमारे अंदर कृतज्ञता है, जितना अधिक हमारे अंदर, वो कहते हैं ना हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड, तो उतना मतलब हम उस करुणा को रिसीव नहीं कर पा रहे, हम औंधे घड़े की तरह हैं और कुछ नहीं। नियाग्रा बरस रही है लेकिन हमने घड़ा पलटा हुआ है। हम लोग एक इंग्लिश के उसमें भी बहुत सुंदर है ये पत्र, मैं मुख्य रूप से पढ़ना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें करुणा ये सारी सारे भाव हैं। करुणा के साथ ये भी आता है कि भाई भगवान की कृपा, फिर जस्टिस का क्या। माने एक बार किसी से बहुत लड़ाई होती थी, तो वो व्यक्ति बहुत बुरा था, पसंद नहीं करता था ये, रोज आके प्रे करता था माँ से, माँ इसको, अब वो बड़ा फलने फूलने लगा। इसने कहा मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ, ये तो और फल फूल रहा है, माँ कह रही है कि और क्या होगा, मेरे संपर्क में आएगा तो तुमने क्या अपेक्षा की है, तुम्हारे कहने पर मैं खड़ी हो जाऊंगी कि इसका विनाश हो। उसके अंदर भी चेंज आ रहा है लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो यहां पे हम लोग ओके, बहुत सारे हैं वेज ऑफ सुप्रीम विजडम, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ये अब मैंने ऑल इंडिया मैगजीन उठा ली है, ये इसलिए क्योंकि सारे जो ऑल इंडिया मैगजीन में है वो अग्निशिखा में नए ट्रांसलेट होते हैं, अब उसके कारण के पीछे कारण। लेकिन ये ऑल इंडिया मैगजीन में है तो इंग्लिश में है, सो आई विल रीड इन इंग्लिश। पेज नंबर 36 ऑल इंडिया मैगजीन, सेम इशू, डिवाइन ग्रेस कंपैशन एंड द लॉ। I should like to say something about the divine grace. For you seem to think it should be something like a divine reason, acting upon lines not very different from those of human intelligence. ये पापी ये बुरा आदमी दुराचारी हम तो हम ही एक हैं सदाचारी जीवन में संसार में कृपा के अधिकारी तो but it is not that ऐसा नहीं है. Also it is not a universal divine compassion either acting impartially on all who approach it and acceding to all prayers. होती कि एक यूनिवर्सल कंपैशन कि आप कष्ट में हैं तकलीफ में आप गए और भगवान की करुणा आई. इट डज नॉट सिलेक्ट द राइटियस एंड रिजेक्ट द सिनर. ये कृपा है वो चला गया कृपा के अधीन. अनेकों अनेकों कहानियां हैं एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. हमारे यहां कि वो कृपा के जो अधीन चला गया उसके बाद ये राइट रॉन्ग सब समाप्त हो जाता है. महिषासुर में सबसे बड़ी कहानी ये महिषासुर दिखाते ना मरता नहीं है. एक्चुअल ओरिजिनल स्टोरी में चंडी में अगर आप ओरिजिनल पढ़ेंगे मार्कंडे पुराण में मरता नहीं है वो बड़ा स्मार्ट आदमी है असुर है. इतना कुछ करने के बाद लास्ट में वो देखता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है तो अपना ब्रह्मास्त्र फेंकता है. क्या ब्रह्मास्त्र है? शरणागत हो जाता है. इट्स देयर इन द ओरिजिनल स्टोरी. महिषासुर जैसे ही शरणागत होता है माँ दुर्गा बिकॉज शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ महेश्वरी एंड महाकाली वो एक्सेप्ट कर लेती है. महिषासुर नेवर डाइज. महिषासुर बिकम्स द सर्वेंट ऑफ द डिवाइन मदर. ये ओरिजिनल स्टोरी की बात कर रहा हूं. वो नहीं जो प्रचलित स्टोरी जो हम लोग मानसिकता में लिए हैं. वो ये बात समझ गया था कि भाई इनके सामने अब शरण कर दो शरणागत. और ये हम देखते हैं कई बार विभीषण जब शरण लेते हैं और सारे जितने भी असुर हैं. ऑल्सो हाँ The divine grace came to aid the persecutor Saul of Tarsus. ये कहानी पता होगी हम लोग को क्रिश्चियनिटीज की कहानी है जिसमें वो सारे क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करता था और फिर एक दिन भूमि गिर गया प्यासा है मरने वाला है. बहुत युद्ध होते थे. अभी शांति प्रिय सब बनते हैं. बहुत युद्ध किए अभी तक करते थे अभी भी कर रहे हैं. जितने लोगों को आप शांति प्रिय बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा युद्ध वही करते हैं. तो वो जो सॉल ऑफ टर्सस जो किंग क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करता था वो वहाँ पड़ा हुआ है भूमि पर और कहता है प्यास प्यास प्यास. अचानक वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं यीशु मसीह और कहते हैं बच्चे पानी पियोगे तो वो पानी पीने के लिए देते हैं. अब वो पानी पी के कहता है आप मैं तो सबको आपके ही लोगों को कहता है कोई बात नहीं है मेरी करुणा इस पर डिपेंड नहीं करती है. ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट कन्वर्ट. और उसके बाद क्रिश्चियनिटी को उस व्यक्ति ने ठीक अशोक की कहानी है. हमारे यहाँ जो अशोक की कहानी कही जाती है वैसी कुछ कहानी इसकी कि ही कन्वर्टेड मैनी पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी. तो यहाँ पर सॉल ऑफ टार्सस इट केम टू सेंट ऑगस्टीन द प्रोफ्लीगेट. उसके पत्र पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा. पत्र नहीं प्रार्थना है कि लॉर्ड ग्रांट मी चेस्टिटी बट नॉट येट. थोड़े समय मुझे और लेकिन साइकिक प्रेयर्स व्हाट अ वे टू जगई एंड मधाई ऑफ इन फेमस फेम. चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों को मारते थे डराते थे पत्थर फेंकते थे और उनकी कन्वर्शन की कहानी तो मतलब अद्भुत है. टू बिल्व मंगल एंड मेनी अदर्स हुज कन्वर्शन माइट वेल स्कैंडलाइज द प्योरिटेनिज्म ऑफ द ह्यूमन मॉरल इंटेलिजेंस बट इट कैन कम टू द राइटियस ऑल्सो. कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है पापी के पास ही नहीं आती भगवान की कृपा. जो पुण्य करते हैं अच्छे लोग हैं उनके पास भी आती है लेकिन अब जो कहने वाले हैं ना वो नींद उड़ा देगा. शेरिन का अंदाज है क्या कह रहे हैं. इट कम्स टू राइटियसनेस राइटियसनेस एंड cutting them off their self-righteousness and leading to a purer consciousness beyond these things. जी हम तो बहुत अच्छे हैं हम तो बहुत अच्छे हैं भगवान के पास आप चले गए बहुत अच्छे हो. अच्छा देखता हूँ मैं अब आप साल दो साल के बाद कहेंगे हमाम में हम सब जब आपके अंदर से सेल्फ राइटियसनेस का भूत उतर जाता है ना, तब आप ग्रो करने के लिए तैयार होते हैं। विनम्रता की इतनी आवश्यकता होती है। इसीलिए जितने डेवलप्ड लोग होते हैं ना, बड़े बेनेवोलेंट होते हैं, बड़े जेनरस होते हैं, हाइपर क्रिटिकल जजमेंटल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं ना उसी राह से गुजरे हैं, तो जजमेंटल नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता है और भगवान की कृपा के बारे में उनको पता होता है। इट इज ए पावर दैट इज सुपीरियर टू एनी रूल, इवन टू द कॉस्मिक लॉ, कर्म विधान से। फॉर ऑल स्पिरिचुअल सीयर्स हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द लॉ एंड ग्रेस, येट इट इज नॉट इनडिस्क्रिमिनेट। उसका जो कारण है बहुत पीछे कब छिपा हुआ है, मां ने बताए हैं कुछ एक इंस्टेंसेस में, समय का अभाव है इसलिए वी आर नॉट गोइंग। मातृजय कहती है मैंने इनको प्रॉमिस किया था। कब प्रॉमिस किया था किसी को नहीं मालूम। प्रॉमिस किया था जब सुप्रमेंट लाएगा तो मैं आऊंगी बताने के लिए, बताऊंगी। और उसमें अगर आप इनके सम ऑफ देम, अगर आप इनके जीवन में जाएंगे, इसलिए कई बार कहते हैं लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में तो यह था। मैंने कहा भैया होगा, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया उसके बाद ये सब कैलकुलेशन तुम अपने दिमाग में रखो, समस्या तुम्हारी है भगवान की नहीं है। उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसके आगे मतलब इट्स द फाइनल सीट। तो यहां पर कहते हैं कि तीन चीजें हैं। ओनली इट हैज ए डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इट्स ओन विच सीज थिंग्स एंड पर्संस एंड द राइट टाइम्स एंड सीजन्स विद अनदर विजन देन दैट ऑफ द माइंड और एनी अदर नॉर्मल पावर। स्टेट ऑफ ग्रेस इज प्रिपेयर्ड इन द इंडिविजुअल ऑफन बिहाइंड थिक वेल्स बाई मीन्स नॉट कैलकुलेबल बाई द माइंड एंड वेन द स्टेट ऑफ ग्रेस कम्स देन द ग्रेस इट सेल्फ एक्ट्स। अंत में इसके साथ हम लोग रुकेंगे। देर आर दीज थ्री पावर्स, तीन शक्तियां जो संसार में ऑपरेट करती हैं, द कॉस्मिक लॉ ऑफ कर्मा और वॉट एल्स, जिसको हम लोग कहते हैं कार्मिक लॉ, विधि का विधान, जो हम उसमें भी ऐसे नहीं होता है पाप पुण्य जैसे हम बिल्कुल बाहरी। कर्मा इज नॉट जस्ट आउटर एक्शन, आपके अंदर क्या 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 हो रहा है। वरना तो हर नमाजी बड़ा पुण्य आत्मा है, चाहे वो गाय काटे बकरा काटे, ऐसे नहीं होता है। वो सारी आपकी इंटेंट से लेके एक्शन सब कुछ देखा जाता है। नंबर टू, द डिवाइन कंपैशन एक्टिंग ऑन एज मैनी एज इट कैन रीच थ्रू द नेट्स ऑफ द लॉ एंड गिविंग देम देयर चांस। यहां पर आपको चांस दिया जा रहा है, करुणा ने क्यों पिकअप कर लिया वी डोंट नो। एंड द डिवाइन ग्रेस विच एक्ट्स मोर इनकैलकुलेबली बट ऑल्सो मोर इरेजिस्टिबली दैन द अदर्स। देखो यही है, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या करना होता है। अब कई बार इसकी भी पूछते हैं ऐसे कि भाई आश्रम आने के लिए क्या खूबी। मैंने कहा भैया खूबी अभी पता नहीं, भगवान ने चुन लिया, अब आगे हमें नहीं मालूम, उनकी उनकी समस्या है। ये प्रॉब्लम उनकी है, वार्तालाप कृपया वहाँ कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, संसार भरा हुआ है अच्छे लोगों से। किसी किसी को क्यों चुनते हैं वी डोंट नो, वो ग्रेस है, इनकैलकुलेबल है। द ओनली क्वेश्चन इज वेदर देर इज समथिंग बिहाइंड ऑल द एनोमलीज ऑफ लाइफ विच कैन रिस्पॉन्ड टू द कॉल एंड ओपन इट सेल्फ विद वॉट एवर डिफिकल्टी टिल इट इज रेडी फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ द डिवाइन ग्रेस। तो पूरी बात यही है कि भगवान का जो काम है महेश्वरी, फार अबव द थिंकिंग माइंड, करुणा की देवी, प्रज्ञा की देवी, वो हर किसी के साथ समान व्यवहार करती हैं। लेकिन वो समानता कैसी है, वो बाली की अंडरस्टैंडिंग वाली समानता नहीं है, वो श्री राम की समानता है। वो बाली नहीं समझ पाता है कि ये समानता कैसी है, कि मुझे क्यों मार रहे हो आप, सुग्रीव को क्यों आप हेल्प कर रहे हो। तो वो एक अलग लेवल की समानता है जिसमें हम जब तक वो प्रज्ञा, और यहां तक श्री अरविंद कहते हैं इवन द पनिशमेंट्स आर नॉट ए पनिशमेंट बट ए ग्रेस। अगर जीवन में कठिन अवसर भी आता है तो आपको ये मान के कि कृपा है। माँ कहती है वेन एवर इन लाइफ देर इज ए डिफिकल्टी एक्सेप्ट इट एज ए ग्रेस एंड इट विल टर्न आउट टू बी सो, कि ये कृपा है जिसने मेरे जीवन के सर्कमस्टेंसेज अरेंज किए हैं। कई लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, विमुख हो जाते हैं, युद्ध लड़ने लगते हैं और वो लूज कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। लेकिन जब हम उसको एक कृपा के रूप में लेते हैं और शरणागत होते हैं कि भाई आपकी कृपा है, जिस विद राखो रामी, जितने भी लोग गए हैं आगे उन्होंने यही बात कही अल्टीमेटली, और जब आप उस कृपा के अधीन होकर रहने लगते हो तो वो कृपा का विस्तार, दृष्टि सब, देन यू बिगिन टू सी कि वो कृपा कैसे ऑपरेट कर रही है। या फिर कई वर्षों के बाद जब महाभारत जिससे आप गुजर रहे थे खत्म हो जाती है, तब आप देखते हो कि शुद्ध गीता का ज्ञान तो तभी हमें मिला था जब जीवन में युद्ध और संघर्ष चल रहा था। तो ये है बैकग्राउंड महेश्वरी का। माँ ने उनके प्रकाश को वाइट लाइट, और कहा है कि वो शक्ति ऐसी है माँ महेश्वरी की कि कोई असुर उसके सामने टिक नहीं सकता है। इट इमीडिएटली डिसॉल्व्स, क्योंकि कोई इलविल बैडविल वो स्टे नहीं कर सकती है। इट इज सो पावरफुल। महाकाली तो फिर भी युद्ध करेंगे, महेश्वरी युद्ध नहीं करती हैं, कुछ नहीं, वो कुछ बूंदे प्रकाश की, एंड दैट इज अनफ टू डिसॉल्व ऑल बैड विल, ऑल इल विल। उसके बारे में कि उनके जो श्वेत प्रकाश है और कैसे ऑपरेट करता है, शी इज फार अबव द थिंकिंग माइंड। तो उनका तो आसन है सर्वोच्च है, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था अनिल भैया ने प्रारंभ में राज राजेश्वरी, एक्चुअली श्री अरविंद ने शब्द यूज किया है इंपीरियल राज राजेश्वरी। राज राजेश्वरी को ये नहीं कि वो आके लड़ती नहीं है, वो महाकाली लड़ेंगी, महालक्ष्मी दे दे तैयार करेंगी, महासरस्वती एक एक डिटेल में, वो तो बस बैठी, उनकी दृष्टि काफी है चीजों को बदलने के लिए। जय मां।
बहुत बहुत आभार डॉक्टर आलोक भैया, और कितना आनंद हम सबको आता है, एक घंटे का समय पता ही नहीं चलता है, कितना रोचक, कितना कुछ, और लगता है कि सुनते ही जाए। और कभी ऐसा अच्छा अच्छा लगता है कि जितना कुछ वो बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं समय की सीमा के कारण, एक उदाहरण दूसरा उदाहरण तीसरा उदाहरण सुनने का मन करता है। भैया पर समय अगर बचे तो द्रौपदी वाला प्रसंग को आप और बढ़ाना चाहते थे।
जरूर 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 कही।
और देखिए कितना सुंदर ध्यान के समय के अंदर ध्वनि हम सबको सुनाई पड़ाई थी, और किस तरह से उस प्रसंग को उन्होंने ज्ञान में परिवर्तित किया कि जो बैकग्राउंड वॉइस होती हैं वो कैसे प्रवेश करती हैं, कैसे डिजायर से आती हैं जब हम प्रयास करते हैं। और कल्याण बात की बहुत सुंदर बताया है, और व्याख्या हमें एक सुनने को मिलती है, एक बार हम पढ़ लेते हैं निष्काप, लेकिन जब व्याख्या को सुनते हैं और उनके द्वारा जो शब्द पढ़े जाते हैं उनकी व्याख्या सुनने को मिलती है तो फिर वो अंदर प्रवेश करता है। मैं बहुत आभारी हूँ उनके प्रति, बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो हमको जैसे कि वेदों के ज्ञान को पृष्ठों में हमारे ऋषियों ने छोटे व्यक्त किया उस गुण ज्ञान को, वैसे ही हमको ये वार्तामाला कम सहायता कर रही है। मैं आपसे प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूँ, सभी साधक अपना नाम लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना नाम लेकर के प्रश्न कोई पूछ सकते हैं। भैया मैं सबसे पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा हटके है। आपने जी बात की कि प्रज्ञा तार्किक मन से ऊपर है, आपने बताया। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ऐसे कोई उदाहरण है कि जैसे कि चेतन मन और अवचेतन मन, और चेतन मन हमारा तर्क करता है, अवचेतन मन तर्क नहीं करता है। और भारतीय साहित्य में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जब सोते हुए बालक को ज्ञान दिया गया, यानी अवचेतन मन में ज्ञान पहुंचाया गया पीछे से, क्या हम माने वो शुद्ध ज्ञान होता है?
हाँ, तो अवचेतन मन, एक अवचेतन शब्द एक बहुत विशाल भूमि को कवर करता है, केवल प्रज्ञा की भूमि को नहीं। अवचेतन मन में वह सब भी है जो हमारे अंदर दबा हुआ है, छिपा हुआ है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मन में हमारे अंदर
ऑडियो बंद कर लें ताकि हम लोग आलोक भैया की बातों को गहराई से समझें और समझ सकें।
तो अवचेतन मन जो है वो जिसको आम तौर पे अवचेतन मन हम कहते हैं, उसमें तीन स्तर हैं जो कार्यरत होते हैं। एक है जो जिसको अंग्रेजी में सबकॉन्शियस कहते हैं, उसमें बहुत सी हमारी चीज़ें दबी हैं, छिपी हैं, और ये नहीं कि सब बहुत अच्छी हैं और वो भी ऑपरेट करती हैं हमारे ऊपर, लेकिन जो आपने उदाहरण दिया उसमें ये नहीं उपयोग में लाया जा रहा है। दूसरा होता है जिसको अंग्रेजी में श्री अरविंद कहते हैं सबलिमिनल। ये तीन सोर्सेज हैं हमारे एक्शन के। सबलिमिनल एक विशाल भूमि में प्रवेश करता है, तो वो क्या है कि वह ज्ञान जो हमारे तत्कालिक इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है वो अन्यान्य रूप में हमारे अंदर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों को इसका संकेत, अभी सुनामी आई थी तो पशुओं को संकेत मिल गया था, और जरावा ट्राइब को भी संकेत मिल गया था। तो इस तरह से ये एक प्रकार की फैकल्टी होती है जो सबलिमिनल के अंदर होती है, लेकिन जो प्रज्ञा है, विशेष रूप से इसको प्रज्ञा कहा जा रहा है, वो एक मन के ऊपर सुपर कॉन्शियंट उस अवस्था में है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि वही प्रज्ञा जो ऊपर में डिवाइन विजडम का काम करती है, वही निम्न प्रकृति में इंस्टिंक्ट का काम करती है, और इसको हम लोग नाम तौर पर कहते हैं गट फीलिंग। कभी कभी वो बिल्कुल सही होती है, तो वही प्रज्ञा जो ऊपर पशुओं के अंदर होती है, इंस्टिंक्ट के रूप में काम करती है। पशु तो रैशनल माइंड से, वो तार्किक मन नहीं उपयोग में लाते हैं, लेकिन वो बिना रैशनल माइंड के इंस्टिंक्टिवली जानते हैं। तो वही जो प्रज्ञा ऊपर में वास्तव में वो अति चेतन या सुपर कॉन्शियंट की जो सहज स्वाभाविक है, वही पशु के अंदर या कई लोगों के अंदर जो सरल हैं, सिंपल हैं। अब तर्क कहाँ आता है जब रैशनल माइंड, ये पढ़े लिखे लोगों के अंदर ज़्यादा समस्या होती है, वरना वो नॉर्मली इंस्टिंक्ट से एक्ट करते हैं और उसमें कई चीज़ें होती हैं जो सही होती हैं। लेकिन समस्या ये है, अंतर ये है कि जो इंस्टिंक्ट पे एक्ट करते हैं वो बहुत ही एक सीमित रेंज होती है जो उनको दी जाती है। लेकिन जो अति चेतन की जो विजडम है, प्रज्ञा है, सुपर कॉन्शियंट की जो विजडम है, वो एक बार अगर इंसान के अंदर ऑपरेटिव होती है तो वो कहीं भी डायरेक्ट की जा सकती है। मतलब इट इज ए एक्विजिशन, या दैट विजडम यूजेज द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सबकॉन्शियंट में, जैसा आपने बताया, उस बच्चे ने एक पर्टिकुलर सवाल को, रामानुजम के केस में है कि वो इक्वेशन सॉल्व कर देते थे, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन, और उनको खुद ही नहीं समझ आता था कि ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। शकुंतला देवी के केस में, लेकिन वो एक लिमिटेड रेंज है। पर जो प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, या प्रज्ञा की देवी उसको अपना यंत्र बना लेती हैं, वो फिर विजडम कहीं पर भी अप्लाई कर सकती है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैविंग ए लाइट विच इज़ लाइक ए टॉर्च लाइट, जो आपको इमीडिएट चीज को बता सकती है, एंड लिविंग अंडर ए होल ट्यूबलाइट इल्यूमिनेशन। ये अंतर है, पर मूल रूप से बात सही है आपकी।
इस बीच में इंट्यूशन कहाँ है, हायरार्की में इंट्यूशन कहाँ पर आता है?
हाँ, तो बिल्कुल इंट्यूशन प्रज्ञा का ही एक रूप है। तो इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रिवेलेशन, ये सारे प्रज्ञा के रूप हैं, अलग अलग रूप से ऑपरेट करती है। अब इंस्पिरेशन है जो, इसको कई जगहों पे शेरविंद ने एक्सप्लेन भी किया है, इंस्पिरेशन प्रेरणा, जब मन शांत होता है तो प्रेरणा उतरती है। और रेवेलेशन है, अचानक कोई, जैसे बिजली कौंधी वैसे कोई चीज़ हमारे अंदर कौंधती है। इंट्यूशन है जो डायरेक्ट नॉलेज है, लेकिन वो सीमित है। अब प्रज्ञा का क्या है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, ये तीनों चीज़ों को उपयोग में लाएगी। लेकिन प्रज्ञा आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें दिखा देगी। तो उसका जो फील्ड है, सेम चीज़ है, लेकिन प्रज्ञा जिसको हम कहते हैं, वो उसका एक फील्ड बहुत बड़ा है, और वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबको दृष्टि में ले आती है। इंट्यूशन उस समय पर और उस पर्टिकुलर अवस्था में, उस पर्टिकुलर स्थान पे, उस व्यक्ति या सिचुएशन के लिए कार्यरत होती है, उसी का एक रूप है।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया। हमारे बीच में श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के संस्थापक चेयरमैन पूज्यवर विजय पोद्दार जी उपस्थित है, मैं उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ। और कोई सार्थक प्रश्न पूछना चाहे तो अवश्य पूछे, भैया हमारे बीच में है भी।
जी, मैं पूछना चाहता हूँ आलोक भैया से कि जी भैया, जो मैगजीन है उसमें जब मैं दूसरों को दुख भोगते हुए देखता हूँ तो करता हूँ कि मैं अभागा, परंतु वह प्रज्ञा जो मेरी नहीं है, आगे वाले दुख को देखती है और उसका मोदन करती है। तो ऐसे तो श्री अरविंद का स्टेटमेंट नाम हासिल है, लेकिन भैया आप यह हमें बताइए कि दूसरों के दुखों को भोगते हुए देखने से अभागा भाव कैसे आता?
हाँ, यही मैंने कहा कि उसके अंदर ये कैच है। तो अब अभागा किस सेंस में है, एक्चुअली दुख हमेशा एक प्रज्ञा है जो ये जानती है कि जो अभागा है, जो इस समय जिसके पास कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, वो इस द्वार से निकल करके एक वृहत्तर सुख की ओर या एक ज्ञान की ओर जा रहा है। तो कई बार होता है कि व्यक्ति की, भाई दूसरों के जीवन में जो दुख है मेरे जीवन में नहीं है, तो क्या भगवान ने उन लोगों को ही चुना है, जैसे राम जी के जीवन में इत्यादि, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, मैंने वो चीज़ को अनुभव नहीं किया। तो कई बार ये लगता है कि ये मैं आपको रियल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं आया था तो मेरे अंदर भी इस तरह का प्रश्न उठा था कि मेरे लाइफ में ऐसे कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ था, सब अच्छा ही हुआ अपने आप। तो मन में ये प्रश्न उठता था कि ये कृपा है या कुछ और है, ये कैसे हो रहा है। तो महेश्वरी जी ने तो यही कहा था कि भाई ये कृपा को कैलकुलेट नहीं करो। बाद में मुझे पता चला कि भाई आएगा, सबका टाइम आएगा। तो वो कहते हैं कि वो मैंने देखा कि प्रज्ञा आपको कैसे तैयार कर रही है एक बृहत्तर जीवन के लिए, उस मार्ग से ले जा रही है। तो ये तो शेयरविंद ही ये लिख सकते हैं कि मैं अभागा हूं, ये साधारण व्यक्ति नहीं सोच सकता है। साधारण व्यक्ति तो ये सोचेगा जब मैं दूसरों को दुखी देखता हूं तो मैं सोचता हूं मैं कितना भाग्यशाली हूं। तो यही मैंने इसीलिए वहां रुका भी था कि ये शेयरविंद की एक विशालता दिखाता है कि उन्होंने कैसे ये भाव उनके अंदर जगा है। स्पेसिफिकली आई नोटेड फॉर दिस वेरी रीजन। पर जो प्रज्ञा है वो दिखाती है कि भाई तुमको मैं किस तरह कार्य कर रहा हूँ। ये शेयरविंद के जीवन का अनुभव है। फॉर एग्जाम्पल जब स्वतंत्रता संग्राम होता है, उनके सारी चीज़ें उनके अनुभव से आई हैं। तो कितने लोग थे जो उस समय जेल में भी थे, जो अंडमान चले गए, निकोबार 14-14 साल कारावास हुआ, 2 को फांसी हो गई और उसके बाद सब कहीं ना कहीं चले गए। लेकिन शेयरविंद को भगवान ने कैसे, और उनके पूरा तो हम सब जानते हैं उस बैकग्राउंड को, पौंडीचेरी आकर के किस तरह से एक प्रकार से देखा जाए तो एक विशेष सुरक्षा के कवच में रखा। तो वहाँ पर उस कंटेक्स्ट है, इनके सारे शेयरविंद के अनुभव हैं कि भाई मुझे यहाँ भगवान ने मुझे इतना विशेष क्यों रख लिया कि बाकी लोग जब दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो मुझे वो अवसर क्यों नहीं दिया भगवान ने। ये एक बहुत बड़ा, एक जैसे योद्धा होता है ना, वो कह सकता है कि मुझे भी ये अवसर मिलना चाहिए। लेकिन तब वो प्रज्ञा जागती है और वो दिखाती है दूरगामी परिणाम। ये उनका अपना अनुभव है। जब श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हें किसी और कार्य के लिए रखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस बार तुम दुख और कष्ट से गुजरो, कारा कहानी में ये उल्लेख आता है। वरना उनके पूर्व जीवन में दौंतों के रूप में तो वो बिहेडिंग होती है, पर वो कहते हैं इस बार मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दुख और कष्ट से गुजरो। ये शेरविंद का अपना अनुभव है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और रखा है, वो प्रज्ञा फिर बताती है। क्योंकि वैसे पांडिचेरी में आके वो जो सारा जो रिस्क था, डेंजर, और जिससे बाकी सारे जो उस समय के रिवोल्यूशनरी थे गुजरे, शेरविंद डिड नॉट गो थ्रू दैट। तो उस सेंस में है।
कोई और प्रश्न हो किसी साधक के मन में तो अवश्य जल्दी से पूछें। भैया मैं अंत में एक सार्वजनिक समस्या है जो जुड़ी है हमारे यहाँ से अलग के विषय से।
हाँ जरूर जरूर,
मैं आपका परामर्श ले सकते हैं, आपकी गाइडेंस।
हाँ जरूर जरूर कहिए।
ये मथुरा केंद्र में रिलिक्स स्थापित है और श्री अरविंद की प्रतिमा भी उनके सामने स्थापित है।
हाँ,
और क्योंकि ये मेरे प्रश्न यहाँ इसलिए उठा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हम लोग हैं केंद्र की व्यवस्था को देखते हैं और बहुत सारे दुर्दांत जो है या कहेंगे बड़े सघन बड़े महान साधक हैं जो आते हैं केंद्र में आते रहते हैं। तो हमारे यहाँ एक साधक है जो अक्सर आकर के, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, उनको रोकूं या करने दूं ऐसा। श्री अरविंद की प्रतिमा के ऊपर जब 15 अगस्त होगा तो बाकायदा तिरंगा झंडे की पगड़ी पहनाएंगे, तिरंगा झंडा गले में डालेंगे, जब ठंड होगी तो उनको टोपी पहना के चले जाते हैं।
माना कीजिए, बिल्कुल रोकिए, बिल्कुल रोकिए, निस्संदेह। और उनको ये समझाना है कि ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस है कि भाई आप सार्वजनिक जगह नहीं है स्थान, केंद्र सार्वजनिक स्थान नहीं है कि जो भी, अब अगर मान लीजिए आपने आज पगड़ी पहनाई, कल को कोई कुछ और करे, होली के दिन रंग डाल दे, तो वन हैज टू अंडरस्टैंड हर एक स्थान की अपनी एक मर्यादा है। वो अपने घर में क्या करते हैं ये उनकी समस्या है, लेकिन एक सार्वजनिक स्थान है तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, मेरे सामने की बात है। ये चंपक लाल जी से किसी ने ये पूछा, कहा कि मुझे माँ ने मुझे आपके पास भेजा है काम लेने के लिए मेरे स्वप्न में माँ आई और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा कि चंपक लाल जी से मिलो और वो तुम्हें काम देंगे। चंपक लाल जी ने कहा माँ ने मुझे ऐसा नहीं कहा है, और मैटर उनको वहीं भेज दिया। अब आपको दिल्ली आश्रम की एक घटना आपको बता रहा हूँ, तारा जी से पूछिएगा वो बताएंगी। वो दिल्ली आश्रम में एक साधक थे, वो जब वहाँ से आपने पता होगा कि वो फ्लाइट का रूट है पास में, तो वो जब फ्लाइट जाती थी तो वो देख करके पहले अपने विचारों से वो करते थे कि फ्लाइट का कोर्स डाइवर्ट हो जाए तो फिर वो कभी कि रेलिक्स को शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसे वो तो एक मतलब वो कहिए कि आप भाई ये आपको भगवान ने कहा है, जब वो चाहेंगे ऐसा हो तो आप भगवान से कह दीजिए कि जो यहाँ व्यवस्थापक हैं उनको बता दीजिए कृपा करके वो भगवान तो कैपेबल हैं, वो उनको बता देंगे समस्या क्या है तो बिल्कुल जय माँ जय माँ।
हम बहुत कृतज्ञ हैं प्यालोक भैया के, बहुत सुंदर व्याख्या इस गुरु विचार की, आनंद आ गया माँ महेश्वरी के बारे में पढ़ा सुन के, प्रज्ञा की करुणा की देवी। आइए हम सब मिलके बात में सबसे अंत में माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पुनः मात्र ध्यान करते हैं ध्यान संकेत पर।